नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर पहुंचेंगी। वे कल वायुसेना की ओर से पोकरण में आयोजित युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 में शिरकत करेंगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। 5,73,000 से अधिक मतदाता बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया। और भारतीय रेलवे होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 1,244 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जैसलमेर के पोकरण में कल भारतीय वायुसेना की ओर से वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल का आज दोपहर बाद जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। श्रीमती मुर्मू की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जैसलमेर आएंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 के दौरान 120 लड़ाकू विमान उड़ान भरकर वायुसेना की प्रभावी कार्रवाई क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इनमें देश के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल, Sukhoi-30, MKI तेजस, मिराज 2000 और जगुआर शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर बेड़े में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और भारी वजन उठाने की क्षमता रखने वाले चिनुक हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
राज्य विधानसभा कार्यवाही की शुरुआत आज प्रश्नकाल के साथ होगी। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक डॉ सुभाष गर्ग, डॉ शिखा मील बराला, फूल सिंह मीणा और राजेंद्र पारिक विभिन्न बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सदन की मेज पर रखेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जन लेखा समिति 2025-2026 के 7 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। कई याचिकाओं का उपस्थापन भी किया जाएगा। सदन में आज पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 विधेयक लाने का फैसला शामिल है। राज्य में राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय भी बनाया जाएगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के आने से जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान हैं, वे भी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक श्रेणी से हटाया गया है, जिससे कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी नगरपालिका चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय बनने से रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक, बीमा, NBFC और शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराधों पर लगाम कसी जा सकेगी। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने जयपुर के B2 बाईपास पर बनने वाले कन्वेंशन सेंटर मंडपम के संशोधित मॉडल को भी स्वीकृति दी है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस सूची के अनुसार प्रदेश में 4,02,20,734 मतदाता हैं। इनमें 2,08,62,380 पुरुष, 1,93,58,147 महिला और 207 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 573,000 से अधिक मतदाता बढ़े हैं। बांसवाड़ा जिले में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक 4.55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फलौदी जिला दूसरे स्थान पर रहा है। श्री सिंह ने बताया कि मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन इस साल 29 जनवरी को किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने में असाधारण योगदान देने के लिए इजराइल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले विश्व के पहले नेता हैं। इजराइल की संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने यह सम्मान प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस सम्मान से सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है बल्कि भारत और इजराइल के बीच की स्थायी मित्रता को सम्मान दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने जल प्रबंधन, कृषि, प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, साथ ही प्रमुख घटनाक्रमों पर भी गहन विचार विमर्श किया। पर्यटन विभाग की ओर से आज से ब्रज होली महोत्सव की शुरुआत हो रही है। डीग, कामा और भरतपुर में हो रहे इस महोत्सव के तहत रंग, आस्था और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। इसमें भाग लेने के लिए देशी विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमारे डीग संवाददाता ने बताया कि मेहंदी, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई।
जल महलों के रंगीन फवारों को देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक डीग आ रहे हैं। रंगीन फवारों की इंद्रधनुषी छटा देखने के लिए पर्यटक काफी उत्साहित रहते हैं। वहीं शाम को मेगा कल्चरल इवनिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से गायन एवं नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। राजस्थानी संस्कृति के साथ ब्रज संस्कृति का समागम डीग की ब्रज होली में देखने को मिलेगा। प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग।
होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न रेलवे जोन में 18 मार्च तक 1,244 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि यदि मांग बढ़ती है तो इन विशेष ट्रेन यात्राओं के संचालन की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। ये विशेष सेवाएं देशभर के प्रमुख शहरों, राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों को जोड़ेंगी। इससे सभी यात्रियों को कंफर्म सीटें मिलेंगी और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम होगी। दृष्टि बाधित और मूक बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर तथा डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग और आईआईटी जोधपुर की ओर से स्मार्ट उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। आईआईटी जोधपुर ने इस परियोजना को गीता ज्ञान इन द एयर नाम दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि परियोजना के तहत कई डिवाइस तैयार की जा रही है। ये डिवाइस बच्चों को डिजिटल दुनिया से सीधे जोड़ने में सहायक होगी।
आईआईटी जोधपुर के प्रोजेक्ट गीता ज्ञान इन एयर के तहत अत्याधुनिक स्मार्ट उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो इन बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देंगे। इनमें नाम्या नामक डिवाइस प्रमुख है, जो मोबाइल जैसे फ्लेक्सिबल बैंड के रूप में कार्य करता है और बच्चों को डिजिटल दुनिया से सीधे जोड़ने में सहायक होगा। मूक बधिर बच्चों के लिए होलोग्राम आधारित सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसे वे वर्चुअल रूप से साइन लैंग्वेज सीख सकेंगे। नाम्या और वाणी सहित न्यू हैप्टिक ग्लेव्स जैसे उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। हाल ही में समाज कल्याण विभाग व आईआईटी टीम ने नेत्रहीन विकास संस्थान में इन तकनीकों का सफल परीक्षण किया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
44वीं रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आज से पाली में शुरू होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में जोधपुर रेंज की 12 टीमों के 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें पुरुष और महिला वर्गों के लिए कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती और शूटिंग सहित विभिन्न खेल आयोजित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर पहुंचेंगी। वे कल वायुसेना की ओर से पोकरण में आयोजित युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 में शिरकत करेंगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। 573,000 से अधिक मतदाता बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया है और भारतीय रेलवे होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 1244 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।